So just before starting the video, I want you to understand that the purpose of this channel is to give you unbiased information on different businesses. Dono pros and cons hum include karte hain. And the business that we are going to discuss today, as a standard disclaimer, we do not have any personal ownership or bias in the company. With this, let's start. Hi investors, welcome to SOIC. So aaj ke is business analysis mein, we'll be talking about a business which is like a conglomerate. So conglomerates kya hote hain? So conglomerates wo businesses hote hain jinme multiple divisions hote hain. एंड कंग्लोमरेट्स में एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या होती है कि एक बिजनेस के कैश फ्लोज यूज़ करके बाकी बिजनेसेस बिल्ड करते जाते हैं. तो बिफोर आई टॉक अबाउट दिस बिजनेस, यहाँ पे मैं टू इंटरेस्टिंग कंग्लोमरेट्स का आपको एग्जांपल दे देता हूँ मिड कैप एंड लार्ज कैप स्पेस में. तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एक केमिकल कंपनी है एंड इस केमिकल कंपनी में आज मल्टीपल बिजनेस डिविजन है. तो इस केमिकल कंपनी में आप देखेंगे तो टेक्निकल टेक्सटाइल का जो डिवीजन है जिसमें 1400 करोड़ का कैपिटल एम्प्लॉयड होता था, जो आज भी 1300 या 1400 करोड़ का ही है. बट एट द सेम टाइम इस कंपनी ने केमिकल बिजनेस में 1000 करोड़ से लेके ऑलमोस्ट 83 करोड़ का कैपिटल एम्प्लॉय कर दिया. सो बेसिकली जो भी इंक्रीमेंटल कैपिटल एलोकेशन थी वो केमिकल बिजनेस के अंदर गई एंड आपका जो पैकेजिंग फिल्म बिजनेस है उसके अंदर गई एंड स्टॉक इज नियरली 100 bagger इन दैट टाइम पीरियड. सिमिलरली एक और बिजनेस आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये केबल्स एंड वायर्स स्पेस के अंदर एंड कंडक्टर्स स्पेस के अंदर है. यहाँ पे भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंडक्टर्स और ट्रांसफार्मर ऑयल थोड़ा सा साइक्लिकल बिजनेस है, बट पावर एंड टेलीकॉम केबल्स थोड़ा सा स्ट्रक्चरल बिजनेस इन नेचर है. तो यहाँ पे केबल एंड टेलीकॉम का बिजनेस इनका कभी होता नहीं था, बट लास्ट 4-5 years में दे हैव रियली स्टार्टेड बिल्डिंग दैट बिजनेस आउट एंड आज उस बिजनेस पे 317 करोड़ का इन्होंने कैपिटल एम्प्लॉय करा है, दैट इज डेट प्लस इक्विटी, जो एक टाइम पे 20 करोड़ का आता था. एंड इस यूनिट ऑफ बिजनेस के अंदर कंपनी ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का केपेक्स भी कर रही है इस टाइम पे. वेरस कंडक्टर बिजनेस और बाकी सारे बिजनेसेस की अगर आप ROC देखोगे तो आपको देखेगा 40-50% के आसपास ROC है, but the company is taking those cash flows and building the other units of business. So the idea to identify over here is ki jis business ka hum discussion kar rahe hain that is a commodity business, but commodity business se kaise aap cash flows use karke you try to diversify into multiple business streams. That is what the interesting pattern jo humne dekha hai ki kuch mid caps and large caps ke andar over the years chala hai. To yahan pe ek book recommendation main aapke liye laya hu by the name of Outsiders by William Thorndike. एंड दिस इज़ अ बुक विच एक्सप्लेन्स कि एक CEO की कैपिटल एलोकेशन टूल किट क्या होती है. तो कैश के सोर्सेज क्या होते हैं, फ्री कैश फ्लो होता है, डेट रेज करना होता है, इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं, एसेट सेल कर सकते हैं एंड जो रिजर्व्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं. फिर एलोकेशन कहाँ करते हैं, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, डेट को रीपे करने के लिए, एक्विजिशंस करने के लिए, रीपर्चेज ऑफ स्टॉक के लिए एंड डिविडेंड्स पे करने के लिए. एंड एक्चुअली मैं दिस इज़ वन ऑफ द बुक्स विच आई विल हाईली सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू रीड बिकॉज over a long period of time, as it is written in the book, that two companies with identical operating results and different approaches to allocating capital will derive two very different long-term outcomes for shareholders. So the business that we are going to discuss today is known by the name of Triveni Engineering. And Triveni Engineering ke business ka bhi aapko bahut basic crux of capital allocation pehle dikhata hu. So over the last 2 to 3, over the last 4 years, company ne nearly 3581 crores ka jo cash hai, उसमें से 1400 करोड़ डिविडेंड एंड जो डिविडेंड्स एंड बायबैक्स है उसके अंदर स्पेंड करें, 1237 करोड़ वर्किंग कैपिटल के लिए रेज करें, फिर 929 करोड़ का कैपेक्स करें, डैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो बायबैक ऑफ शेयर्स देखते हैं तो लास्ट 2-3 years में आपको देखेगा कंपनी ने FY23 में 800 करोड़ के शेयर्स बायबैक करे थे बिकॉज त्रिवेणी टर्बाइन्स जो इनकी सिस्टर कंपनी है उनके इन्होंने शेयर्स सेल करके शेयर बायबैक कर दिया. काफ़ी सारी कंपनीज नॉन वैल्यू क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में चले जाती है बट इनको कुछ केपेक्स के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तो इन्होंने शेयर्स का जो बायबैक है वही कर दिया मार्केट से. डिविडेंड कंपनी ने लाइक रेगुलरली पे करे एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो भी 17-20% के आसपास है. एंड वॉट इज़ मोर इंटरेस्टिंग इज दैट कंपनी के बहुत सारे बिजनेस डिविजन हैं एंड सीमिंगली कमोडिटी सेक्टर में ऑपरेट करता है. तो आज हम फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर एथेनॉल एंड शुगर सेक्टर का भी डिस्कशन करेंगे एंड साथ साथ एथेनॉल एंड शुगर सेक्टर के साथ साथ देव क्रिएटेड अ PTB बिजनेस, इसको हम पावर ट्रांसमिशन बिजनेस कहते हैं, जहाँ पे हाई स्पीड जो गियर्स हैं वो सेल करें. एंड साथ साथ वाटर EPC बिजनेस भी इन्होंने बिल्ड करा है जहाँ पे ONM कॉन्ट्रैक्ट्स भी इस टाइम पे इनको मिल रहे हैं. सो ऑल दीज बिजनेस यूनिट्स वील डिस्कस एंड वील सी कि इस सेक्टर को हम कैसे पढ़ सकते हैं, इन्हें से कंग्लोमरेट्स को हमें कैसे असेस करना चाहिए. तो अब हम प्रमोटर फैमिली की जो बिजनेस हिस्ट्री है उससे स्टार्ट करते हैं बिकॉज वेन एवर वी आर स्टडिंग कंग्लोमरेट्स तो हमें यही सारी चीज़ें पता होना जरूरी है. तो प्रमोटर फैमिली की अगर हम बिजनेस हिस्ट्री से देखते हैं तो एक्चुअली में जो ध्रुव सानी है जो अभी आई थिंक ही इज़ इन हिज 80s राइट नाउ, तो उन्होंने क्या करा था कि ही वाज अ ग्रेजुएट फ्रॉम वार्डन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड साथ साथ क्या ही डिड इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम कैम्ब्रिज. एंड उन्होंने अपने अंकल का जो शुगर बिजनेस है जो 1933 के अंदर खतौली UP के अंदर सेटअप हुआ था, तो उन्होंने 1973 के अंदर आके उसको ज्वाइन करा. एंड उस बिजनेस के अंदर एक इंजीनियरिंग बिजनेस भी था दैट वॉज सिचुएटेड इन अलाहाबाद. तो इन 2000 ही मर्ज हिज फादर्स शुगर मिल्स विद हिज अंकल्स. तो जो फादर की जो शुगर मिल्स थी उस बिजनेस को अंकल की शुगर मिल्स के साथ मर्ज करा. एंड इवेंचुअली द सानी सेटअप फोर न्यू शुगर फैक्ट्रीज इन यूपी बिटवीन 2005 to 2006 एंड मेड त्रिवेणी इंजीनियरिंग अमंग द टॉप 3 शुगर प्रोड्यूसर्स इन द कंट्री. तो आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखी होगी कि दो त्रिवेणी बिजनेसेस लिस्टेड है, एक तो त्रिवेणी टर्बाइन्स के नाम से लिस्टेड है और एक त्रिवेणी इंजीनियरिंग के नाम से लिस्टेड है. तो त्रिवेणी टर्बाइन एंड इंजीनियरिंग, तो जो ध्रुव सानी के दोनों बेटे हैं, दैट इज़ जो एक का नाम तरुण है दूसरे का नाम निखिल है. तो तरुण सानी बेसिकली रन्स द त्रिवेणी इंजीनियरिंग बिजनेस, जहाँ पे एक स्मॉलर बिजनेस ऑफ गेयर्स भी है एंड वाटर सिस्टम का भी बिजनेस है एंड 7 शुगर मिल्स भी हैं उत्तर प्रदेश में एंड दे आर द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर, राइट. एंड जो निखिल सानी है ही रन्स त्रिवेणी टर्बाइन विच इज़ हेड क्वार्टर्ड इन बैंगलोर एंड इट इज़ अ मेकर ऑफ स्टीम बेस्ड रोटेटिंग टर्बाइन्स दैट आर बॉट बाय इंडस्ट्रीज फॉर कैप्टिव हीट एंड पावर रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज बाय रिन्यूएबल फ्यूल बेस्ड इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स. तो त्रिवेणी टर्बाइन जो है उसके पास कपैसिटी है 30 MW ऑफ पावर बनाने की एंड इन द जॉइंट वेंचर विद जी त्रिवेणी एज अ मेजोरिटी स्टेक एंड इट मेक्स टर्बाइन्स दैट कैन प्रोड्यूस बिटवीन 30 MW to 100 MW ऑफ पावर. तो ये तो ग्रुप की बिजनेस हिस्ट्री है, एक तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग लिस्टेड है और एक त्रिवेणी टर्बाइन लिस्टेड है. एंड वन सिंपल चेक विच आई यूजुअली टेक वेन एवर आई एम स्टडिंग कंपनीज और मैनेजमेंट्स इज कि ओवर द लॉन्ग रन हैव बोथ द कंपनीज विच आर लिस्टेड सेपरेटली हैव क्रिएटेड वेल्थ और नॉट. तो त्रिवेणी टर्बाइन का भी अगर हम लास्ट 10 to 15 ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो इट सीम्स वेरी वेरी क्लियर दैट द बिजनेस हैज क्रिएटेड वेल्थ बिकॉज इट्स अ वन फोकस्ड प्रोडक्ट कंपनी एंड जो पावर सेक्टर अच्छा करता है तो इनकी बैकलॉग्स भी बहुत बढ़ जाती हैं. फिर हम त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो आपको देखिएगा त्रिवेणी इंजीनियरिंग हैज़ बीन अ लंपी कंपाउंडर. मैंने कुछ फेजेस में बहुत अच्छा करता है, कुछ फेजेस में साइडवेज चले जाता है और फिर कुछ फेजेस में बहुत अच्छा करता है. इसका प्राइमरी रीजन क्या है? बिकॉज त्रिवेणी इंजीनियरिंग हैज़ एक्चुअली कंग्लोमरेट कैरेक्टरिस्टिक्स जहाँ पे बहुत सारे बिजनेस डिविजन है. तो अगर हम त्रिवेणी इंजीनियरिंग के बिजनेस डिविजन यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या बिजनेस डिविजन है एंड हर एक बिजनेस डिविजन के अंदर डीप डाइव करते हैं. तो यहाँ पे हम त्रिवेणी इंजीनियरिंग के मल्टीपल बिजनेसेस देखते हैं. एक तो शुगर बिजनेस है, सेकंड डिस्टिलरी बिजनेस है, थर्ड वाटर बिजनेस है, फोर्थ पावर ट्रांसमिशन बिजनेस है एंड फिफ्थ को जनरेशन बिजनेस है. तो पहले हम शुगर बिजनेस का डिस्कशन करते हैं क्योंकि आज तक हमने चैनल पे शुगर एंड एथेनॉल इंडस्ट्री का कभी डिस्कशन नहीं करा. तो शुगर बिजनेस की अगर आप इकोनॉमिक्स देखते हैं तो 2012 में 1482 करोड़ की सेल थी जो आज 4362 करोड़ की सेल है. वेज अगर आप मार्जिन देखेंगे शुगर बिजनेस के तो एक टाइम पे लॉसेस थे क्योंकि शुगर इंडस्ट्री की बहुत भारी डाउन साइकिल थी बट पोस्ट द गवर्नमेंट डेट हैज़ कम इन तो काफ़ी हद तक शुगर इंडस्ट्री में पॉलिसी चेंजेस बहुत हुए हैं एंड लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में शुगर बिजनेस हैज़ बीन प्रॉफिटेबल फॉर देम एंड यहाँ पे जो इनके मार्जिन हैं डेट हैज़ बीन वेरियंग बिटवीन 7 to 11% के बीच के अंदर. तो पहली चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं कि हम शुगर इंडस्ट्री को साइक्लिकल इंडस्ट्री क्यों कहते हैं, शुगर इंडस्ट्री के अंदर क्या साइकिल्स प्ले आउट करती हैं. तो ये चीज़ हमें समझना जरूरी है क्योंकि हमने एक डीपली साइक्लिकल बिजनेस सेगमेंट पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इनके ईच एंड एवरी बिजनेस सेगमेंट पढ़ेंगे बिकॉज सम ऑफ द बिजनेस सेगमेंट्स आर एक्सीलेंट, सम ऑफ द बिजनेस सेगमेंट्स आर गुड इन गुड टाइम्स एंड बैड इन बैड टाइम्स. पहले हम शुगर बिजनेस का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं क्यों एक साइक्लिकल इंडस्ट्री है. तो बहुत ही सिंपल एक चार्ट हम लोगों ने आपके लिए यहाँ पे दिखाया है कि जब शुगर के प्राइसेस डिक्लाइन होते हैं तो फिर क्या होता है, इट लीड्स टू लोअर प्रॉफिटेबिलिटी एंड लॉसेस एंड लोअर प्रॉफिटेबिलिटी और लॉसेज होते हैं तो शुगर केन जो शुगर मिल्स होती है लाइक त्रिवेणी इंजीनियरिंग या सब हो गए तो ये लोग शुगर किससे खरीदते हैं, शुगर केन फार्मर से. तो इट लीड्स टू हाई केन प्राइस एरियाज, माने जो शुगर केन फार्मर्स हैं उनको ये टाइम पे नहीं कर पाते विच इन टर्न लीड्स टू लोअर शुगर केन प्रोडक्शन इन नेक्स्ट सीजन बिकॉज अगर शुगर केन फार्मर के पास क्रॉप नहीं है तो वो कैसे प्रोड्यूस करेंगे. देन दैट लीड्स टू लोअर शुगर प्रोडक्शन. फिर इवेंचुअली क्या होता है, क्योंकि शुगर प्रोडक्शन लो होगी, क्योंकि शुगर की प्लांटेशन कम होगी, देन दैट लीड्स टू हायर शुगर प्राइसेज. हायर शुगर प्राइसेज होते हैं तो इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी होती है, फिर गुड टाइमली केन प्राइस पेमेंट्स होती हैं, फिर हायर शुगर केन प्रोडक्शन होती है एंड देन दैट लीड्स टू हायर शुगर प्रोडक्शन. तो यहाँ पर अगर आप वॉलिटिलिटी देखते हैं ओवर द ईयर्स तो आपको जो एराज एज अ परसेंटेज ऑफ अमाउंट पेबल, एराज माने जो शुगर केन फार्मर को पैसा देते हैं, तो यू विल सी कि 2014 to 2017 के बीच में थोड़ी सी साइकिल ख़राब हो गई थी. 2012 में ऑलमोस्ट 10% पहुंच गया था, फिर 13%, 25%, फिर 2018 के अंदर फिगर 14% होगी, 9% होगी, 14% होगी, बट इस टाइम पे ये जो फिगर है दैट इज़ अंडर अ लॉट ऑफ कंट्रोल. तो माने कि जो शुगर मिल्स हैं दे आर एबल टू पे द शुगर केन फार्मर्स ऑन टाइम, तो इस वजह से शुगर केन के जो एराज हैं वो बहुत इस टाइम पे कम चल रहे हैं. तो दिस इज़ वाई शुगर इंडस्ट्री इज़ अ साइक्लिकल इंडस्ट्री इन इटसेल्फ. बट इस इंडस्ट्री को ट्रूली समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि इस इंडस्ट्री के कुछ टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती है और इस इंडस्ट्री की वैल्यू चेन क्या होती है. तो काफ़ी फन थिंग टू स्टडी है कि अगर हम इस इंडस्ट्री की वैल्यू चेन देखते हैं तो बेसिक चीज़ क्या होती है शुगर शुगर बनाने के लिए, डैट इज़ शुगर केन। शुगर केन की क्लीनिंग होती है, चॉपिंग होती है, फिर उसमें से जूस एक्सट्रैक्शन होता है, एंड जो शुगर केन जूस है उसके बाद वो हीटिंग एंड फिल्ट्रेशन के लिए जाता है, जिसमें से थिन जूस निकलता है, फिर इवेपोरेशन होती है, फिर उससे सिरप निकलता है, फिर जो सिरप है वो डिफरेंट जो सेंट्रीफ्यूजेस हैं उनके अंदर जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर तीन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें और क्रिएट होती है, डैट इज़ शुगर केन जूस, सेकेंड इज़ बी हैवी मोलासिस एंड थर्ड इज़ सी हैवी मोलासिस। तो जब हम एथेनॉल की बात करते हैं तो एथेनॉल इन तीन प्रोडक्ट से बनता है, डैट इज़ बी हैवी मोलासिस, सी हैवी मोलासिस एंड शुगर केन जूस। तो इस चीज़ को आप याद रखना कि शुगर केन की जो वैल्यू चेन है कुछ ऐसे लगती है कि जब शुगर की प्रोडक्शन कैसे होती है, तो इस प्रोडक्शन के साथ साथ एक रेसिड्यू क्या क्रिएट होता है, डैट इज़ नोन बाय द नेम ऑफ बगास। तो जो बगास है डैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस स्टीम एंड उससे दीज कंपनीज कैन जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज़ वाई शुगर मिल्स आर सेल्फ सफिशिएंट इन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उनका जो रेसिड्यू बचता है शुगर केन का उससे दे आर एबल टू जनरेट स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये पूरा वैल्यू चेन हमारा शुगर इंडस्ट्री का ऐसे रहता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शुगर बिजनेस में और क्या क्या टर्म्स होती हैं। तो अगर आप की कैपेसिटीज़ देखेंगे तो अगर आप पूरे इंडिया के अंदर शुगर केन की कैपेसिटीज़ देखते हैं, डैट इज शुगर केन की क्रशिंग की कैपेसिटी, तो टन्स ऑफ केन पर डे पे देखेंगे तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग का जो कैपेसिटी है 63,000 टन्स ऑफ केन पर डे है, पहले 63,000 टन्स ऑफ शुगर केन क्रश कर सकते हैं पर डे। बलरामपुर चीनी का 80,000 टन्स ऑफ केन पर डे है, फिर श्री रेणुका शुगर का 42,000 जो टन्स ऑफ केन पर डे है, डालमिया शुगर का 37,500 है, एंड बजाज शुगर का सबसे लार्जेस्ट डैट इज 1,36,000 टन्स ऑफ केन पर डे। सो इंडिया के अंदर त्रिवेणी इंजीनियरिंग इज एक्चुअली द थर्ड लार्जेस्ट शुगर मिल। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर में समझनी पड़ेगी। और इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर में क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी होती है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या होती है कि शुगर केन के प्राइसेस आर आल्सो बेसिकली लाइक जो गवर्नमेंट इन पे बताती है कि शुगर केन के प्राइसेस क्या हो सकते हैं, एंड जो आपकी एंड शुगर के प्राइसेस है दैट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय अ मिनिमम सेलिंग प्राइस, जिसको हम MSP भी कहते हैं। तो यहाँ पे साइकिल और भी कैसे ख़राब हो सकती है, अगर शुगर केन के प्राइसेस बढ़ गए एंड जिस प्राइस पे आप शुगर बेच रहे हैं मिनिमम सेलिंग प्राइस घट गया, सो देन डैट कैन लीड टू स्क्वीज इन मार्जिन। वेराज अगर शुगर केन के प्राइसेस बढ़ गए पर आपका MSP उतने का उतना ही रहा, देन डैट लीड्स टू एक्सपेंशन इन मार्जिन। तो शुगर के जो प्राइसेस हैं दे आर ऑल्सो लिंक टू इंटरनेशनल प्राइसेस, बिकॉज इंटरनेशनल भी शुगर इज़ अ कमोडिटी जहाँ पे कभी कभी ओवर प्रोडक्शन हो जाता है एंड कभी कभी अंडर प्रोडक्शन हो जाता है। तो इंटरनेशनली ब्राज़ील इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे शुगर की ओवर प्रोडक्शन एंड अंडर प्रोडक्शन इज कीनली वॉच्ड, बिकॉज ब्राज़ील इज़ परहैप्स वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। तो इस वजह से काफ़ी लोग ब्राज़ील में क्या चल रहा है शुगर के अंदर, वहाँ पे ओवर प्रोडक्शन हो रही है, अंडर प्रोडक्शन हो रही है, उसको भी की मेट्रिक को मतलब वॉच करते रहते हैं। सो दिस इज़ हाउ द इंडस्ट्री ऑपरेट्स ऊपर ऊपर से। तो जब हम त्रिवेणी इंजीनियरिंग के शुगर बिजनेस की बात करते हैं तो इनकी 7 शुगर मिल्स आर इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, जिसमें से क्लोज टू 3-4 इनकी शुगर मिल्स वेस्टर्न यूपी के अंदर है। वेस्टर्न यूपी में होने की एक एडवांटेज है, बिकॉज वेस्टर्न यूपी में जो इरीगेशन की फैसिलिटीज़ हैं दोज आर मच बेटर, एंड देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर एज वेल, एंड देर आर लॉट ऑफ रिवर्स विच आर ऑल्सो फ्लोइंग। तो ये तो एक अपने आप ही एडवांटेज हो जाता है। सेकेंड एडवांटेज क्या ओवर द ईयर्स रहा है इस कंपनी को कि शुगर केन फार्मर्स के साथ वर्क कर करके इन्होंने एक तो एरिया अंडर जो शुगर केन वो उसको इंक्रीज़ कराएं, और शुगर केन की जो एक्रेज है वो भी इंक्रीज़ कराई है, एंड साथ साथ जो शुगर केन क्रश्ड है अगर आप इस बिजनेस की देखेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 512 LQ से अभी 932 LQ पे आ गए, जिसमें से नेट रिकवरी और ग्रॉस रिकवरी आप देखेंगे तो माने कितना गन्ना आपने क्रश कराया, कितनी शुगर केन क्रश करी, उसमें से कितना आप जूस निकाल पा रहे हैं, तो इनका ग्रॉस रिकवरी 11.47% के आसपास आता है, विच एक्चुअली इज़ ऑन द हायर एंड वर्सेज द इंडस्ट्री। अगर आप त्रिवेणी लाइक इंजीनियरिंग का ग्रॉस रिकवरी देखेंगे वर्सेज द यूपी एस्टिमेटेड रिकवरी, तो यूपी के अंदर इट इज़ बिलो 10% फॉर दी अदर शुगर मिल्स, वेरएज फॉर देम इट इज़ अ फिगर डैट इज़ अबव 11% ग्रॉस के ऊपर, बिकॉज इनके जो ये फार्मर्स के साथ वर्क कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा हाई यील्ड वैरायटी भी दे रहे हैं एंड अपने प्लांट को ज़्यादा एफिशिएंसी से भी चला पा रहे हैं। सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ इंटरेस्टिंग टू लुक एट, बिकॉज इट्स अ ग्रूसम इंडस्ट्री फोक्स, कभी कभी बहुत अच्छी इंडस्ट्री होगी, कभी कभी बहुत ख़राब इंडस्ट्री होगी। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि मैनेजमेंट कैसे कॉस्ट एफिशिएंसीज पे काम कर रही है एंड कैसे हम P2P एनालिसिस में पीयर्स के साथ देख सकते हैं। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि इनका जो शुगर का सेल है तो शुगर यूजली दो टाइप्स की होती है, ये भी आपको इंटरेस्टिंग मेरे को भी नहीं पता था इस वीडियो से पहले। तो एक्चुअली दो टाइप की शुगर होती है, डैट इज़ वाइट क्रिस्टल शुगर होती है एंड इसके साथ साथ एक आपकी रिफाइंड शुगर होती है। तो वाइट क्रिस्टल शुगर आपकी क्या होती है यूजली विच इज़ यूज इन द डेली कंजम्पशन राइट, वेरस जो इंडस्ट्रियल शुगर होती है इट इज़ नोन एज रिफाइंड शुगर, एंड रिफाइंड शुगर इज़ यूज मेजरली इन फार्मास्यूटिकल ग्रेड। तो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन में भी शुगर यूज़ होती है एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस. एंड इनका जो शुगर का मिक्स है 60% ऑफ इट कम्स फ्रॉम रिफाइंड शुगर, राइट. एंड इनका जो रियलाइजेशन ऑफ शुगर है दैट इज 0.8, दैट इज 80 paisa to 1 rupee हायर वर्सेज द वाइट क्रिस्टल शुगर. सो दैट इज द डिफरेंस विच गेट्स क्रिएटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फिर एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि अगर आप मैंने आपसे डिस्कशन करी थी शुगर केन की वैल्यू चेन में कि जो एक बाय प्रोडक्ट होता है बाय द नेम ऑफ बगास, तो जो बगास है उससे भी पावर प्रोडक्शन हो जाती है. तो इन्होंने 104.5 megawatt का जो एक ग्रिड कनेक्शन कर रखा है एंड ये खुद की ही कैप्टिव पावर जनरेट कर पा रहे हैं उससे. तो इट्स अ टाइप ऑफ अ बिजनेस मॉडल दैट इज़ फुली इंटीग्रेटेड इन टू द शुगर वैल्यू चेन. क्योंकि हम शुगर वैल्यू चेन की बात करें, एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो इनका बिजनेस है, जैसे हम यहाँ प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हैं, तो ईबिट लेवल पे थोड़ी सी वॉलिटिलिटी रहेगी, बट लास्ट 4-5 years में 7-11% की रेंज पे ईबिट का वेरियंस रहे. बट इस पूरी वैल्यू चेन पे जब हम डिस्कशन करते हैं शुगर का, सो वी कैनॉट डिस्कस शुगर विदाउट डिस्कसिंग अबाउट द एल्कोहल वैल्यू चेन और द डिस्टिलरी बिजनेस दैट दे हैव. तो इनके पास शुगर के साथ साथ एक डिस्टिलरी बिजनेस भी है. बट जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, इफ़ यू आर लविंग दिस वीडियो, जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. एंड इसके साथ साथ एक रिटेल इन्वेस्टर की 5 key big problems होती है. पहली बिग प्रॉब्लम क्या होती है कि एक रिटेल इन्वेस्टर को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करनी आती, म्यूचुअल फंड्स नहीं पिक करने आते, साथ साथ ये भी नहीं आता कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप खुद ही फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो. सेकंड बिग प्रॉब्लम क्या आ जाती है एक रिटेल इन्वेस्टर के सामने कि एक रिटेल इन्वेस्टर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को फिल्टर नहीं कर पाते एंड बैलेंस शीट नहीं पढ़नी आती एंड अकाउंटिंग विच इज़ अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस नहीं आती. इट इज़ अ रियली सिंपल टू लर्न इट इवन इफ यू फ्रॉम नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड. थर्ड की बिग प्रॉब्लम क्या रहती है एक रिटेल इन्वेस्टर की कि वी डू नॉट नो हाउ टू वैल्यू अ कंपनी, कंपनी का इंट्रेंसिक वैल्यू कैसे निकालें. फोर्थ बिग प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे बड़ी बिग प्रॉब्लम जो इस बुल मार्केट में बहुत लोग फेस करने वाले हैं कि हम लोगों को सेलिंग नहीं आती, कि कैसे हम एक स्टॉक को ठीक टाइम पे सेल करें और हमें फॉरेंसिक्स भी नहीं आते. जैसे वन ऑफ द हैदराबाद बेस्ड कंपनीज में कैश फ्लोज नहीं आ रहे थे बहुत टाइम से एंड वॉज वेरी ईजी टू टेल फॉर सम ऑफ द SYC स्टूडेंट्स कि इस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कैश फ्लोज नहीं आ रहे, कंपनी इवन दो गाइडेंस बड़ी बड़ी दे रही है. एंड रिसेंटली इस कंपनी के काफ़ी खराब रिजल्ट्स भी हैं, वैल्यूएशन 70-80 PE पे थी. सो वॉट नॉट टू डू इज एक्चुअली मच मोर इम्पॉर्टेंट देन वॉट टू डू वैन इट कम्स टू द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग. एंड फाइनली वी ऑल्सो हैव अ सीरीज वेयर वी टीच यू हाउ यू कैन फिल्टर बिजनेसेस इंडिपेंडेंटली एंड डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर क्या देखना होता है. जैसे हमने लास्ट 2 weeks के अंदर एक मेटल्स एंड माइनिंग पे वेबिनार कराए एंड एक होटल इंडस्ट्री पे वेबिनार कराए. ऑल ऑफ दिस इज मेंट फॉर SYC स्टूडेंट्स. So all these key aspects are part of one SYC membership and if you want to register for the SYC membership, the link is there in the description below and you can use the coupon code SYCBONUS10 and this coupon code will be only valid for the next 3 days. With this, coming back to the analysis, ki ab hum baat karte hain inke distillery division ki jahan pe ye alcohol and ethanol banate hain. To agar hum company ka distillery business dekhte hain, to distillery business ke andar company ki jo sales hain from FY16 jahan 180 crore ki thi, aaj almost 1865 crore ki sale ho gayi hai. मेरा जो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्सेस था जो 43.7 crores होता था, आज 212 crores के आसपास है. मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन द डिस्टिलरी बिजनेस इज क्लोज टू 28-30%, बीच बीच में 69% भी गया हुआ है जब डिस्टिलरी बिजनेस की अपसाइकिल भी आई है. तो डिस्टिलरी बिजनेस में ये लोग करते गए. तो डिस्टिलरी बिजनेस में 3 main बिजनेसेज हैं इनके. एक तो अल्कोहल के वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स इन इंडिया, बिकॉज जो भी आपकी अल्कोहल है इट इज़ बेसिकली प्रोड्यूस यूजिंग मोलासेस. देन इनका बेसिकली रिसेंटली एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल का भी है एंड साथ साथ एथेनॉल का भी बिजनेस है, जहाँ पे इनके पास ग्रेन बेस्ड डिस्टिलरी भी है, तो मोलासेस बेस्ड भी है, ग्रेन बेस्ड भी है. तो जो डुअल फीड डिस्टिलरी है दोनों इनके पास है. एंड साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस बिजनेस के अंदर, तो टोटल अल्कोहल और एथेनॉल इन्होंने कितना प्रोड्यूस करा था, तो टोटल अल्कोहल की जो सेल थी इनकी 2023 में वो 1,80,423 kiloliters की थी. प्लस एथेनॉल की अगर आप देखते हैं तो 1.81 lakh kiloliters के आसपास की सेल थी और डिस्टिलेशन कैपेसिटी इनकी 660 kiloliters पर डे के आसपास थी. क्योंकि डिस्टिलेशन कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं, सो दे वांट टू ऑलमोस्ट टेक देयर डिस्टिलेशन कैपेसिटी टू 1100, पर जिसमें से एक प्लान अभी रिसेंटली कैंसिल भी हुआ है, तो हम उसका भी डिस्कशन करेंगे. पर डिस्टिलेशन में बात करने से पहले, तो डिस्टिलरी में होता क्या है कि आपका एथेनॉल बनता है एंड एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल बनता है एंड साथ साथ आपका अल्कोहल बनता है. अगर हम इकोनॉमिक्स ऑफ एथेनॉल देखें, तो इकोनॉमिक्स ऑफ एथेनॉल हमें क्या बताती है. तो हमने जब शुगर की वैल्यू चेन देखी थी, तो हमने देखा था कि शुगर की वैल्यू चेन में 3 चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, डैट इज़ शुगर केन जूस, सी हैवी एंड बी हैवी करके जो मोलासेस क्रिएट होती हैं. तो अगर हम ROC देखते हैं एथेनॉल प्लांट्स की, तो सबसे ज़्यादा पेबैक पीरियड किस में है, अगर कोई बी हैवी मोलासेस के थ्रू बनाए, वहाँ पे ऑलमोस्ट 42% का ROC बैठता है. वेरस अगर कोई डायरेक्ट रूट के थ्रू बना रहा है, डैट इज़ यूजिंग शुगर केन जूस, तो 15% ROC बैठता है. वेरस अगर कोई सी हैवी मोलासेस यूज़ करके बना रहा है, तो वहाँ पे 33% के आसपास ROC बैठता है. तो आपका एथेनॉल बनाने के भी दो रूट्स होते हैं, वन इज मोलासिस बेस्ड एंड सेकेंड इज ग्रेन बेस्ड। तो मोलासिस बेस्ड क्या होता है, जो पूरी शुगर की वैल्यू चेन से हमारे पास बी हैवी सी हैवी मोलासिस बनते हैं एंड साथ साथ जो हमारे पास शुगर केन जूस रहता है। ग्रेन बेस्ड बनाना है अल्कोहल का तरीका क्या है, दैट इज यूजिंग द ब्रोकन राइस एंड ब्रोकन राइस के साथ साथ जो मेज होती है उसको यूज़ करके बन जाता है। तो इनके पास जो एथेनॉल की कैपेसिटीज़ हैं दोज आर फंजिबल, माने ये ग्रेन बेस्ड भी यूज़ कर सकते हैं एंड मोलासिस बेस्ड भी यूज़ कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हो सकता है इंडिया के अंदर क्या हो आने वाले समय के अंदर, तो अगर आप ब्राज़ील के अंदर भी देखते हैं तो ब्राज़ील के अंदर भी पहले जो प्रोडक्शन था एथेनॉल का शुगर केन से बहुत होता था। तो अगर आप एक्चुअली एथेनॉल का जो प्रोडक्शन है ज़्यादातर ब्राज़ील से ही आया, क्योंकि ब्राज़ील में इट इज़ मोर देन 30% ब्लेंडेड विद पेट्रोल। तो ब्राज़ील के अंदर शुगर केन का जो प्रोडक्शन है आफ्टर 2014 साथ साथ प्लेटो होने लग गया, वहाँ से ग्रोथ रेट्स कम हो गए। वेरस अगर आप कॉर्न बेस्ड एथेनॉल प्रोडक्शन देखते हैं तो ब्राज़ील में इट इज़ ओनली गोइंग इन वन डायरेक्शन। इसका भी एक इंटरेस्टिंग रीज़न है, रीज़न भी सो जब मेज की बात करते हैं तो इट इज़ अ लेस वाटर गजलिंग क्रॉप वर्सेज कम्पेयर टू शुगर केन। शुगर केन लिटरली 60% तो वाटर ही होता है, इसलिए तो उसके अंदर जूस होता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र के अंदर शुगर केन की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होती है, तो शुगर केन का जो प्रोडक्शन है हो सकता है आज से 10-15 साल बाद महाराष्ट्र के अंदर घटने लग जाए, बिकॉज वहाँ पे ग्राउंड वाटर टेबल बहुत ज़्यादा सिवियरली डिप्लीट हो सकता है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होना तो यही चाहिए कि ग्रेन बेस्ड एथेनॉल पे, डैट इज़ जो डैट इज़ प्रोड्यूस यूजिंग मेज एंड ब्रोकन राइस, इवेंचुअली बढ़ना चाहिए। बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन हाउ दी गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑल्सो पैन आउट। बट इनके पास दोनों बनाने की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं ब्राज़ील के अंदर और इंडिया के अंदर कंपैरिजन देखते हैं, तो इंडिया में भी पॉलिसी पुश बहुत आ रहा है टू ब्लेंड 20% ऑफ पेट्रोल विद एथेनॉल बाय 2025। तो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की बात करें विच विल बी एबल टू मैनेज दैट, तो ब्राज़ील के अंदर तो ऐसी भी फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स आ रही हैं जहाँ पे मोर देन 50% ऑफ पेट्रोल इज ब्लेंडेड विद एथेनॉल। तो यहाँ पे ब्राज़ील के अंदर अगर हम अभी कंपैरिजन करते हैं तो FY21 का जो उनका प्रोडक्शन था डैट वॉज 30 बिलियन लीटर्स ऑफ एथेनॉल। इंडिया के अंदर जो FY21 का प्रोडक्शन था डैट वॉज 3.5 बिलियन एथेनॉल, वेराज FY30 का प्रोडक्शन टारगेट किया ब्राज़ील का डैट इज 50 बिलियन लीटर्स ऑफ एथेनॉल, एंड इंडिया का कितना टारगेट है डैट इज 11.5 बिलियन लीटर्स ऑफ एथेनॉल, डैट इज नियरली 3-4x। फ्लेक्स फ्यूल पेनिट्रेशन ब्राज़ील के अंदर 82% के आसपास की है, जो कार की पेनिट्रेशन है कि डिफरेंट जो कार्स हैं वो आपके एथेनॉल बेस्ड फ्यूल पे चल सकती है। एंड कितना शुगर केन इज बेसिकली बीइंग डाइवर्टेड टुवर्ड्स एथेनॉल प्रोडक्शन, ब्राज़ील के अंदर 56% है एंड इंडिया के अंदर ये जो नंबर है आज 25% के आसपास है। इंडिया की भी अगर आप एथेनॉल इंडस्ट्री देखते हैं, द सप्लाई टू OMCs कितना सप्लाई बढ़ा है, डैट इज़ टू ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, तो सप्लाईज में इंडिया में 38 करोड़ लीटर्स की सप्लाई होती थी 2013-14 में, जो आज 351 करोड़ लीटर के आसपास की सप्लाई हो गई है। एंड एवरेज जो एथेनॉल की ब्लेंडिंग है विद पेट्रोल वो 1.6% से बढ़ के ऑलमोस्ट 11.75% के आसपास आ गई है। सो दैट इज़ द रेट ऑफ ग्रोथ इन द एथेनॉल इंडस्ट्री ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट यहाँ पे जो शुगर मिल कंपनीज हैं दे नेचुरली हैव एन एडवांटेज बिकॉज दे आर बैकवर्ड्स इंटीग्रेटेड एंड दे इट ऑल्सो मेक सेंस फॉर देम, क्योंकि वो डिस्टिलरी ऑपरेशंस में भी फॉरवर्ड इंटीग्रेट कर सकते हैं। स्टैंड लोन एथेनॉल प्रोड्यूसर्स को एक प्रॉब्लम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रॉ मटेरियल सोर्सिंग के अंदर भी हो सकती है, अगर वो ग्रेन बेस्ड कर रहे हैं तो हो सकता है उनको ग्रेन सोर्सिंग करना ईजी हो, बट यहाँ पे इंटीग्रेटेड प्लेयर्स हैं वर्सेज स्टैंड लोन प्लेयर्स हैं, स्टैंड लोन प्लेयर्स का ROC जनरली हायर रहेगा। तो यहाँ पे जो त्रिवेणी इंजीनियरिंग का डिस्टिलरी का बिजनेस है, तो इस टाइम पे हमने डिस्कशन करा 660 किलो लीटर पर डे के आसपास कैपेसिटीज़ है, जिसमें केपेक्स करके 1100 किलो लीटर पर डे लेके जाना चाहते हैं। बट इस बिज़नेस के अंदर क्या रिस्क रहता है कि रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस करा, क्योंकि इंडिया में शुगर का प्रोडक्शन टारगेट कम पड़ गया, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि जो शुगर के जूस और बी हैवी मोलासिस हैं इनके थ्रू आप एथेनॉल को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने कोटा लगा दिया, एंड कोटा कितना था कि यू कैन ओनली लिमिट द शुगर सैक्रिफाइस थ्रू बी हैवी एंड शुगर केन जूस टू 1.7 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ शुगर वर्सेस कंपेयर टू 3.8 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ शुगर इन द प्रीवियस सीजन, एंड दिस केम एज अ सरप्राइज टू द इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री के अंदर ये रिस्क जरूर रहेगा कि जब भी शुगर के प्राइसेस हो सकते हैं बहुत बढ़ जाएं, तो शुगर इज़ अ बेसिक कमोडिटी जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट क्या करे उस टाइम पे कि इनके प्रोडक्शन पे कैपिंग लगा दें। तो इस वजह से त्रिवेणी इंजीनियरिंग ने जो अपना 300 to 330 किलो लीटर पर डे का एथेनॉल एक्सपेंशन प्लान था अभी उसको डेफर कर दिया। तो दिस इज़ अ की रिस्क फैक्टर विच एग्जिस्ट इन द इंडस्ट्री। और भी अगर हम त्रिवेणी इंजीनियरिंग की कैपेसिटीज़ देखते हैं, तो कैपेसिटीज़ के अंदर अगर आप यहाँ पे एक बार देखेंगे तो कंपनी के पास दोनों तरीके से एथेनॉल बना सकती है, डैट इज़ थ्रू बी हैवी मोलासिस डिस्टिलरी ऑपरेशन, सी हैवी मोलासिस एंड स्पेशली मेज एज वेल, एंड ब्रोकन राइस के थ्रू भी कंपनी कैन बेसिकली मैन्युफैक्चर एथेनॉल। बट मेज का जो यील्ड है डैट इज़ मच लेसर वर्सेज इवन ब्रोकन राइस। तो इस क्वार्टर में इन्होंने मेज के थ्रू एथेनॉल बनाया था, डैट इज़ ग्रेन बेस्ड प्रोडक्शन, एंड उसमें क्या प्रॉब्लम हुई कि इनकी यील्ड कम थी तो इनके जो मार्जिन है डिस्टिलरी बिजनेस में सफर करें. एंड दिस इज़ वन ऑफ द की रिस्क फैक्टर्स दैट वी शुड कंसिडर एंड वी शुड अंडरस्टैंड. एथेनॉल की ओवरऑल डिमांड कितनी हो सकती है? एथेनॉल की ओवरऑल डिमांड जो 2025-2026 तक अगर यहाँ पे हम चेक करते हैं तो ऑलमोस्ट एथेनॉल की डिमांड 15 बिलियन लीटर्स की हो सकती है, राइट? एंड अगर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का एथेनॉल पे फोकस क्यों है, बिकॉज एथेनॉल के बहुत यूजेस हैं, अल्कोहल ड्रिंक्स में, ऑक्सीडेशन में, फ्यूल फॉर व्हीकल में, सॉल्वेंट्स फॉर पेंट्स एंड सब में. बट मेन और क्या गवर्नमेंट के लिए फ़ायदा हो सकता है कि बेसिकली कि करंट जो अगर ब्लेंडिंग बढ़ती जाती है एथेनॉल के पेट्रोल के साथ तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट बिल में सेविंग हो सकती है, बिकॉज इंडिया आज भी क्रूड ऑयल बहुत इम्पोर्ट करती है. तो अगर 2025 तक वी आर एबल टू अचीव 20% ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम तो नियरली इंडिया में 4 बिलियन डॉलर्स की एक्सपेक्टेड एनुअल सेविंग हो सकती है इम्पोर्ट बिल से. तो ये गवर्नमेंट का पॉलिसी पुश है एंड इस सेक्टर को समझना इसलिए ज़रूरी था बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे स्टैंड लोन प्लेयर्स भी हैं एंड त्रिवेणी इंजीनियरिंग एक इंटीग्रेटेड प्लेयर है. बट यहाँ पे इवन दो ROC बहुत ज़्यादा है बट गवर्नमेंट पॉलिसी के इंटरवेंशन का एक रिस्क ज़रूर रहता है. तो इसी डिस्टिलरी बिजनेस में कंपनी ने डिसाइड करा है कि एक इंडिया लाइक एक अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करने का, तो जिससे मतलब वो अल्कोहल ऑपरेशन में फॉरवर्ड इंटीग्रेट करेंगे. तो 25 करोड़ का इन्होंने केपेक्स अनाउंस करा है इस क्वार्टर में भी. सो दैट ऑल्सो रिमेन्स टू बी सीन कि ये लोग इस बिजनेस के अंदर और क्या करते हैं. बट दिस बिजनेस जनरली हैज़ वेरी गुड इकोनॉमिक्स बट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन एंड दैट पर्टिकुलर रिस्क तो इस बिजनेस को भी हो सकता है उतना ज्यादा पी मल्टीपल ना मिले बट दिस बिजनेस कैन स्टिल कीप थ्रोइंग गुड कैश फ्लोस. तो अब हम कंपनी के उस बिजनेस सेगमेंट पे आते हैं विच इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन जिसका नाम है पावर ट्रांसमिशन बिजनेस. तो बिजनेस एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले सेगमेंट का बेसिक क्वेश्चन दैट वी शुड आस्क अवरसेल्फ इज इट अ गुड बिजनेस टू बी इन, कि क्या ये अच्छा बिजनेस सेगमेंट है या नहीं है. तो हम कंपनीज के ROCE एंड EBIT मार्जिन देखेंगे इस बिजनेस सेगमेंट का. पहले अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पावर ट्रांसमिशन बिजनेस का देखते हैं तो 2019 में 56% ROCE थी, 2020 में 47% थी, 2021 में 61% थी एंड 2022 में 50% थी. सो ROCE इज मच अबव द 20% नंबर, सो इट मीन्स द बिजनेस इज एक्चुअली गुड. देन अगर हम EBIT मार्जिन देखते हैं तो EBIT मार्जिन कंसिस्टेंटली अबव 30% रहे हैं एंड अभी 2022 में 34% के आसपास थे. अगर बिजनेस की ऑर्डर बुक देखते हैं तो लास्ट 4 to 5 years में ऑर्डर बुक हैज़ मोर देन डबल्ड फ्रॉम 134 crores टू 297 crores. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वैल्यू चेन एनालिसिस इज कि इस बिजनेस में क्या ये यूनिक कर रहे हैं वो भी हम समझते हैं. एंड साथ साथ हम ये देखते हैं कि अगर कोई बिजनेस 34-35% EBIT मार्जिन कर रहा है तो यहाँ पे क्या ये मार्जिन एक्सपेंशन की और प्रोबेबिलिटी है या पॉसिबिलिटी है या नहीं है, क्योंकि अभी तक तो ये बिजनेस मोस्टली डोमेस्टिक एंड आफ्टर मार्केट्स में था बट अब इस बिजनेस के लिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी ओपन हो चुकी है. तो पहले हम ये समझते हैं किसी भी बिजनेस को एनालाइज करने से पहले कि उसका टोटल एड्रेसेबल मार्केट कितना है, कि वहाँ पे मार्केट साइज या मार्केट अपॉर्चुनिटी कितनी रहती है. तो अगर हम गेयर्स की मार्केट को देखते हैं तो गेयर्स की मार्केट इज बेसिकली डिवाइडेड बिटवीन टू सेगमेंट्स. क्या वो टू सेगमेंट्स है? वन इज स्लो स्पीड गेयर्स एंड सेकेंड वन इज हाई स्पीड सेगमेंट्स. तो जो स्लो स्पीड सेगमेंट होते हैं इट इज लार्जली कैटलॉग प्रोडक्ट्स और स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स. वेयर द हाई स्पीड सेगमेंट इज इंजीनियर्ड गेयर सोल्यूशंस फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशन लाइक स्टीम टर्बाइन इंजन्स, गैस टर्बाइन इंजन्स, सेंट्रीफ्यूजल पंप्स एंड कंप्रेसर्स. तो बेसिकली जो इनका PTP बिजनेस है दैट इज प्रेजेंट इन द हाई स्पीड सेगमेंट. एंड इसका अगर हम टोटल एड्रेसेबल मार्केट देखें तो इंडिया के अंदर $500 million की इंडस्ट्रियल गेयर्स इंडस्ट्री है, डैट इज़ क्लोज टू 4,000 crores की, जिसमें से 250 crores इज़ फॉर हाई स्पीड गेयर सेगमेंट. तो इंडिया के अंदर मार्केट साइज इसका 250 crores के आसपास का है. वेराज अगर हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो वर्ल्ड वाइड ये इंडस्ट्री $30 billion के आसपास की है, जिसमें से जो हाई स्पीड गेयर सेगमेंट है दैट इज़ क्लोज टू $500 million, माने वो सेगमेंट 4,000 crores के आसपास का है. तो ओवरऑल अगर हम टोटल एड्रेसेबल मार्केट देखते हैं इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड ऐड करके तो इट कम्स क्लोज टू 4,250 to 4,300 crores. तो ये इनके इस बिजनेस के पूरा टोटल एड्रेसेबल मार्केट है एंड आज ये कंपनी 250 to 260 crore की सेल्स कर रही है. पर यहाँ पे एक रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुई है कि कंपनी का जो टेक्नोलॉजी पार्टनर था डैट वॉज अ कंपनी बाय द नेम ऑफ लफ्किंस. तो लफ्किंस के साथ इन्होंने एक टाई अप करा हुआ था फॉर टेक्नोलॉजी एंड नोहाउ एज वेल, जिसकी वजह से ये लोग काफ़ी सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे. पर 2023 जनवरी में आके इस कंपनी ने क्या करा कि इस कंपनी ने अपना जो टाइप था उसको रिन्यू नहीं करा. तो क्योंकि टाइप रिन्यू नहीं हुआ तो नाउ दिस कंपनी एज एन ऑप्शन टू एक्सपोर्ट एज वेल. तो अब जो पूरा 4,000 crore का मार्केट है दैट हैज़ ओपन्ड अप फॉर दिस कंपनी इन द पावर ट्रांसमिशन बिजनेस. एंड एज पर द मैनेजमेंट कॉन कॉल्स एंड न्यूमरस इंटरव्यूज त्रिवेणी टर्बाइन इज सपोजिडली द लोएस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस गियर्स इन द वर्ल्ड. माने अगर आप थोड़ा सा इंटरव्यूज़ देखते हैं और कॉन कॉल्स भी पढ़ते हैं तो ऑलमोस्ट 40-50% लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वर्सेज अ ग्लोबल मेजर्स. सो दिस गिव्स देम सम राइट टू विन इन दिस बिजनेस सेगमेंट. एंड पूरा का पूरा एक्सपोर्ट मार्केट इस टाइम पे ओपन अप हो गया. और हम देखते हैं कि इस बिजनेस सेगमेंट की क्रिटिकल एप्लीकेशंस क्या है, कौन कौन से सेक्टर्स में इस बिजनेस के जो गियर्स यूज होते हैं. तो पहला तो इसका जो पावर जनरेशन के अंदर इनके गियर्स यूज होते हैं, ऑयल एंड गैस में होते हैं, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स में होते हैं, केमिकल एंड फर्टिलाइजर में होते हैं, शुगर इंडस्ट्री में होते हैं, सीमेंट में होते हैं, रबर एंड प्लास्टिक्स में यूज़ होते हैं, स्टील इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं, एंड जो मरीन इंडस्ट्री वहाँ पे भी यूज़ होते हैं. एंड बिजनेस की जो ऑर्डर बुक है लास्ट थ्री ईयर्स में 2021 में 166 करोड़ की थी, बट अभी 9 मंथ FY24 में नियरली 297 करोड़ के आसपास की इनकी यहाँ पे ऑर्डर बुक हो चुकी है. कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, वन इज़ इन जो इंटीग्रेटेड प्लांट है दैट इज़ बेसिकली इन कर्नाटका मैसूरू, विच हैज़ द इंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर. And they can manufacture gears up to 70 megawatts capacity with speeds of 70,000 RPM, as well as defense products and solutions for Navy. So, PTB business, if you look at some products, you will see it like this. So, there are few products, like single helical gear, you will see. Then, single stage horizontal lift up, multi-stage gear drives. So, basically, the interesting thing about this part of the business is, दीज आर इंजीनियर प्रोडक्ट्स, दीज आर बिल्ड टू प्रिंट एज वेल. माने क्लाइंट की जो नीड है उसके हिसाब से भी बनते हैं. एंड दे इन्वॉल्व प्रिसीजन इंजीनियरिंग. एक स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग होती है और एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग होती है. तो प्रिसीजन इंजीनियरिंग में क्या इंटरेस्टिंग है, तो रिसेंटली मैं टेस्ला की कॉन कॉल पढ़ रहा था जिसमें एलॉन मस्क ने भी एक बात बताई कि एक्चुअली टू मेक सम ऑफ द प्रिसीजन इंजीनियर कॉम्पोनेंट्स यू नीड टू मेक प्रिसीजन, यू नीड टू मेक मशीन्स विच कैन मेक दोज, एंड टू मेक दोज मशीन्स यू नीड अदर टाइप ऑफ मशीन्स टू मेक दोज. तो आपके पास मशीन को मशीन बनाने के लिए आपको प्रिसीजन इंजीनियरिंग आनी चाहिए. एंड दैट इज़ व्हाट टेस्लाज कंपेटिटिव एडवांटेजेस. तो इंजीनियरिंग सेगमेंट पे दो टाइप की गुड्स होती हैं, एक स्टैंडर्डाइज इंजीनियरिंग वाली होती है और एक प्रिसीजन इंजीनियरिंग वाली होती है. सो दिस इज वेयर दिस बिजनेस ऑपरेट्स. सो पीटीबी बिजनेस के अंदर ही त्रिवेणी इंजीनियरिंग का एक रिसेंटली एक डिफेंस में ऑप्शनैलिटी भी आया है. सो बेसिकली त्रिवेणी इज एन OEM फॉर होस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स फॉर इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसके अंदर बेसिकली प्रोपल्शन शाफ्टिंग एंड टर्बो पंप्स के बिजनेस के अंदर है. So that includes research and development for critical turbo products या propulsion shafting systems में. तो propulsion shafting system अगर आप देखेंगे तो ये submarine का propulsion shafting system है. So it is basically what makes a submarine move, right? तो जो ship और submarine के motion के लिए होते हैं, that is what propulsion shafting system is. तो products के अंदर इनके पास propulsion gear boxes हैं, other critical gear boxes हैं, जो gas turbine generators हैं वो भी हैं, critical turbo and motor driven pumps भी हैं, propulsion shafting systems भी हैं. सो दिस इज़ अ डिफेंस ऑप्शनैलिटी डैट देव इस्टेब्लिश्ड. एंड यहाँ पे इस टाइम पे कंपनी का एक केपेक्स आ रहे, इस टाइम पे केपेक्स आ रहे मैसूर के अंदर भी. तो हम इनका जो पूरा केपेक्स है वो भी डिस्कस करते हैं. तो कंपनी का जो ओवरऑल केपेक्स है इस बिजनेस डिवीजन के अंदर, ऑलमोस्ट इट विल टेक देम टू अ कैपेसिटी ऑफ 500 करोड़. तो केपेक्स 180 करोड़ से और बढ़ रहा है. तो अभी करंटली कंपनी की अगर 250-260 करोड़ की सेल है, तो पोस्ट ऑल दीज इन्वेस्टमेंट्स आर डन, सो दे कैन गो टिल अ टॉप लाइन ऑफ 500 करोड़. And their margins could potentially expand. तो कितना expansion होता है वो हमें देखना पड़ेगा. But यहाँ कॉन कॉल में किसी ने उनसे पूछा भी था कि अगर आपकी 180 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है incrementally, and आपने पहले बोला था कि 400 करोड़ तक की आप सेल्स कर सकते हैं विद द करंट केपेक्स डैट यू डूइंग, तो 180 करोड़ पे सिर्फ 0.5x एसेट टर्न होंगे, जो 100 करोड़ का 400 टू 500 का एक्स्ट्रा सेल होएगा. तो कंपनी ने कॉन कॉल में ये भी बताया कि वो बहुत कंजर्वेटिव हो रहे हैं इस टाइम पे, तो द सेल नंबर कुड पोटेंशली बी हायर, बट सम ऑफ दीज आर प्रोजेक्ट ओरिएंटेड बिजनेस, तो एक दो साल में ही पता लगेगा. बट यहाँ पे कैपिटल एलोकेशन और कैपिटल का फ्लो पीटीबी बिजनेस के अंदर केपेक्स का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है. एंड पीटीबी बिजनेस अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो दिस यूज टू बी 0-5% ऑफ देयर ईबिट कॉन्ट्रीब्यूशन 5-6 ईयर्स बैक. आज ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में 20% प्रॉफिटेबिलिटी पीटीबी बिजनेस से आने लग गया है. सो दिस मीन्स दैट दिस बिजनेस कैन बिकम अ सीरियस पार्ट ऑफ द पाई गोइंग फॉरवर्ड आफ्टर 3-4 ईयर्स. तो हमें इस बिजनेस में क्या कैपिटल एलोकेशन हो रही है ओवर 3-4 इयर्स, एक इन्वेस्टर को खुद इंडिपेंडेंटली ट्रैक करना चाहिए. नाउ फाइनली कमिंग टू द वाटर बिजनेस ऑफ द कंपनी. एंड वाटर बिजनेस इनके बिजनेस का लास्ट बिजनेस सेगमेंट है. तो अगर हम वाटर बिजनेस को देखते हैं, तो वाटर बिजनेस के अंदर अगर आप इनके बेसिकली जो ऑर्डर बुक है उसको देखते हैं, तो ओवर द ईयर्स ऑर्डर बुक हैज़ सॉर्ट ऑफ गॉन फ्रॉम अ रेट ऑफ लाइक 600 करोड़ टू ऑलमोस्ट 1400-1500 करोड़. एंड इनकी जो ऑर्डर बुक है उसमें एक ONM का बहुत बड़ा एक कॉन्ट्रैक्ट है. तो ONM का जो प्रोपोर्शन है डैट इज़ हायर वर्सेज द EPC ऑर्डर बुक. तो ONM क्या होता है, डैट इज़ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. तो आपको आपने एक बार प्रोजेक्ट लगा दिया EPC का, बस आपको उसको ऑपरेट करना है, उसको मेंटेन करना है. तो यहाँ पे अगर आप पूरी ऑर्डर बुक देखते हैं FY23 की, डैट इज़ क्लोज टू 1400 करोड़, जिसमें से 916 करोड़ का ONM है, प्लस रिमेनिंग इज़ ऑफ EPC, दैट इज न्यू प्रोजेक्ट्स दैट दे आर डूइंग. तो ये वाटर बिजनेस में करते क्या है, तो व्हाट इट डज इन वाटर बिजनेस इज दैट कंपनी जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं उस पर काम करती है, सी वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स होते हैं उनमें काम करती है, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स पे काम करती है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट्स में काम करती है, एंड साथ ही जो टर्शरी ट्रीटमेंट प्लांट्स है उनमें काम करती है। एंड वाटर बिजनेस के अंदर इनका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है, जिसके अंदर अभी रिसेंटली जो यूपी के अंदर एक सिटी है बाय द नेम ऑफ मथुरा, तो मथुरा में इन्होंने गवर्नमेंट के साथ एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करी है थ्रू विच दे वॉन्ट टू बेसिकली क्लीन द रिवर यमुना, राइट। एंड यहाँ पे लाइक सिटी को लाइक पोल्यूशन फ्री करने के लिए, लाइक वाटर पोल्यूशन फ्री करने के लिए दे हैव सेट अप अ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बिफोर द वाटर इज अलाउड इन टू द रिवर, राइट। सो दिस इज द बिजनेस दैट दे आर डूइंग इन द वाटर यूनिट। बट वाटर यूनिट के अंदर आप इनका ROC देखते हैं या फिर मार्जिन्स भी देखते हैं, सो दे ऑल्सो फ्लक्चुएट अ बिट, क्योंकि वाटर बिजनेस ऑल्सो हैज़ इट्स ओन बेसिकली साइकिल्स। तो यहाँ पे 7-8% का ROC है, गुड ईयर्स में 13-14% भी गया। एंड जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वगैरह मार्जिन देखते हैं, तो दे ऑलवेज बेसिकली आर बेसिकली वेरिंग बिटवीन 7-10% ऑन अ मार्जिन लेवल। सो दिस इज़ विद द वाटर बिजनेस। तो अभी तक हमने देखा कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग के अंदर जो शुगर बिजनेस है उसकी ROC डिसेंट है, डिस्टिलरी बिजनेस की जो ROC है बहुत हाई है, देन हमने PTB बिजनेस का देखा ROC बहुत ज़्यादा हाई है, एंड हमने वाटर बिजनेस देखा जिसकी ROC फ्लक्चुएट करती है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स थीसिस एंड एंटी थीसिस पॉइंटर, क्योंकि हमारे बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग तो काफ़ी हद तक आ चुकी है। एंड फाइनली बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, यहाँ पर मैं आपको एक फाइनल ग्राफ दिखा देता हूँ कि हाउ कंपनी का जो रेवेन्यू मिक्स है कैसे इवॉल्व कराए, कि ओवर द ईयर्स जो नॉन शुगर बिजनेस है दैट हैज़ बिकम 51% ऑफ द ओवरऑल सेल्स, एंड जो शुगर बिजनेस है उसका आज 49-50% का कॉन्ट्रीब्यूशन है। नॉन शुगर बिजनेस में डिस्टिलरी आता है, वाटर बिजनेस आता है, अदर्स में पावर बिजनेस आता है, एंड साथ साथ आपका पावर ट्रांसमिशन बिजनेस का आता है, राइट। नाउ फाइनली कमिंग टू द थीसिस पॉइंट एंड की रिस्क फैक्टर जो इस बिजनेस के अंदर है, तो पहले हम की रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग द रिस्क इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज कंपनी ऑपरेट्स इन अ साइक्लिकल एंड अ कमोडिटी टाइप इंडस्ट्री। तो पहला की रिस्क पॉइंटर क्या है कि देर आर टू मेनी बिजनेसेस टू ट्रैक, तो कंग्लोमरेट्स को यूजली डिस्काउंट मिलता है क्योंकि उनमें टू मेनी बिजनेसेस टू ट्रैक होते हैं अंटिल अनलेस ये लोग वैल्यू क्रिएशन करते हैं बाय डीमर्जर और समथिंग। सेकंड की रिस्क फैक्टर क्या है कि शुगर एंड बोथ एथेनॉल बिजनेसेस आर डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो रिसेंटली शुगर केन जूस के थ्रू गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली कि यू कैनॉट मेक एथेनॉल, विच इज लेड टू इम्पैक्ट ऑन इवन कंपनीज लाइक प्राज इंडस्ट्रीज एंड स्टफ, बिकॉज अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज फ्लिप फ्लॉप होती है, क्योंकि अगर शुगर की शॉर्टेज हो जाती है कंट्री में, तो एथेनॉल के लिए शुगर का जो डाइवर्जन है डैट विल रिड्यूस, सो डैट कैन बी अ की रिस्क फैक्टर, तो इलेक्शन ईयर्स में भी हो सकता है। वाटर बिजनेस हैज लो मार्जिन, सो डैट इज़ अनदर की रिस्क फैक्टर। जब हमने वाटर बिजनेस की डिस्कशन करी तो लोअर मार्जिन बिजनेस है, तो वहाँ पर अगर ज़्यादा कैपिटल एलोकेशन होता है तो वो हमें ट्रैक करना पड़ेगा। PTB बिजनेस की जो एक्सपोर्ट्स के अंदर पोटेंशियल है डैट इज येट टू बी सीन, इवन दो कंपनी केपेक्स बहुत करी है, बट दिस इज वन फैक्टर वर्थ ट्रैकिंग। बिजनेस विल ऑलवेज बी वॉलिटाइल एंड विल हैव साइकिल्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, तो इस बिजनेस में वॉलिटिलिटी रहेगी और साइकिल्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी भी होगी, क्योंकि हमने शुगर बिजनेस और एथेनॉल बिजनेस बारे में सीखा है वो कैसे वॉलिटाइल बिजनेस है। एंड लास्ट की फैक्टर क्या है कि मल्टीपल डिजीजेस टू शुगर केन क्रॉप, तो आई थिंक अभी रेड रॉट डिजीज करके एक शुगर केन के अंदर यूपी में चल रही है, जिसकी वजह से शुगर केन का जो यील्ड है एंड प्रोडक्शन है डैट इज़ ऑल्सो गेटिंग इम्पैक्टेड, तो मल्टीपल डिजीजेज भी हो सकती हैं। सो दीज आर द की रिस्क फैक्टर्स डैट एन इन्वेस्टर मस्ट ट्रैक इंडिपेंडेंटली इफ दे आर स्टडिंग दिस बिजनेस। की थीसिस पॉइंटर क्या हो सकते हैं इस बिजनेस पे, तो पहला की थीसिस पॉइंटर इस बिजनेस के अंदर क्या आता है कि पहले तो बड़ा सिंपल है कि इट इज़ अ मैनेजमेंट विच अंडरस्टैंड्स कैपिटल एलोकेशन, तो मैनेजमेंट को कैपिटल एलोकेशन समझ आती है, मैनेजमेंट ने शेयर बायबैक भी करा, देन PTB बिजनेस को भी ग्रो करने का एफर्ट लगा रहे हैं, राइट। एंड साथ साथ जो डिस्टिलरी के अंदर भी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन करके डिस्टिलरी का भी हमने ROC देखा था कितना हाई है इस टाइम पे, एंड वाटर बिजनेस के अंदर भी ONM का पोर्शन ग्रो करते जा रहे हैं, तो क्लियरली इट्स अ मैनेजमेंट विच अंडरस्टैंड्स कैपिटल एलोकेशन। एंड वी हैव आल्सो सीन कि त्रिवेणी टर्बाइन में भी कितनी वेल्थ क्रिएशन त्रिवेणी फैमिली ने करी। सेकेंड की थीसिस पॉइंटर इज कि जस्ट इमेजिन द साइज ऑफ द PTB बिजनेस 4 years डाउन द लाइन, तो अगर अभी PTB बिजनेस 500 crores का हो सकता है, तो 4 years डाउन द लाइन अगर 20-22% पे ग्रो करते रहता है, तो पोटेंशियली देर इज अ चांस कि दैट बिजनेस माइट बिकम 1000 crore इन साइज। 1000 crore का बिजनेस हो और 35-36% का EBIT मार्जिन हो, तो 350-360 crore का उस बिजनेस का स्टैंड लोन EBIT बन सकता है। तो सिमिलर कंपनीज को देखेंगे, चाहे वो एलिकॉन हो चाहे वो बाकी कंपनीज हो, तो नियरली वो 20-22 times EBITDA पे ट्रेड कर रही है। वेदर दिस गेट्स अ सिमिलर वैल्यूएशन नॉ नॉट डैट इज समथिंग डैट इज वर्थ ट्रैकिंग, बट मैंने आपको एक वैल्यूएशन की हिंट दे रहा हूँ कि ऐसे बिजनेसेस में मार्जिन और सेफ्टी कभी कभी तब मिल जाती है जब बहुत ज़्यादा जो कमोडिटी बिजनेस होता है उसके अंदर करेक्शन आ जाए, मार्केट कैप काफ़ी करेक्ट हो जाए, तो कभी कभी जो रियल अंडरलाइंग हिडन पार्ट ऑफ द बिजनेस है उसके लिए वी आर नॉट पेइंग दैट मच अप. तो ये कैलकुलेशन आपको इंडिपेंडेंटली खुद करनी चाहिए. एंड SOIC ट्राइब मेंबर्स के मैंने क्या करा इस वीडियो में कि हाउ टू वैल्यू कॉन्ग्लोमरेट्स करके या कॉन्ग्लोमरेट्स के डिफरेंट डिविजन्स को कैसे वैल्यू करते हैं, इसके लिए हमने आपके लिए SOIC मेंबरशिप के अंदर भी कंटिन्यूस क्लासेस के अंदर एक वीडियो अपलोड करी है जो आप यूट्यूब कंक्लूजन सीरीज के अंदर जाके देख सकते हैं कि कॉन्ग्लोमरेट जैसे अगर त्रिवेणी इंजीनियरिंग को हम वैल्यू कर रहे हैं तो हमें कैसे डिफरेंट वैल्यूएशन पैरामीटर्स हम त्रिवेणी इंजीनियरिंग के लिए बना सकते हैं. देन की थीसिस पॉइंटर्स में क्या आता है कि PTB बिजनेस का एक्सपोर्ट्स में पोटेंशियल काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है. फिर शुगर एंड डिस्टिलरी बिजनेस की अगर अपसाइकिल होगी तो देन ऑल द एस्टिमेट्स विल गो आउट ऑफ द विंडो, बिकॉज वहाँ पे अगर अपसाइकिल आती है तो शुगर के मार्जिन्स काफ़ी तेजी से बढ़ सकते हैं. सो बिजनेस और थीसिस पॉइंटर में क्या हो सकता है कि वाटर बिजनेस का जो ONM कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट है डैट कैन इंक्रीज, सो डैट कैन ऑल्सो बिकम अ मच हायर मार्जिन बिजनेस इन नेचर. एंड फाइनल की थीसिस पॉइंटर क्या है कि जैसे वॉलेटाइल बिजनेस है तो इसके अपसाइकल्स एंड डाउन साइकिल्स भी रहेंगे. तो अपसाइकिल अगर गलती से एंटर करके तो देन देर कुड बी अ पोटेंशियल, जैसे हमने SRF और अपार में पास्ट में देखा हुआ है कि वैन ऑल द बिजनेस सेगमेंट स्टार्ट फायरिंग टुगेदर. सो दैट इज अ वाइल की थीसिस पॉइंटर. यू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो कि आपको क्या लगता है कि थीसिस पॉइंटर बेटर है या एंटी थीसिस पॉइंटर बेटर है, या ऐसे बिजनेसेस को हमें वेट एंड वॉच करके जो इनकी डेवलपमेंट है वो चेक करनी चाहिए, बिकॉज दीज बिजनेसेस आर अ बिट कॉम्प्लिकेटेड टू ट्रैक और इनमें मल्टीपल बिजनेस सेगमेंट्स होते हैं. सो इन द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो वी विल सी कि हमने सीखा कि हम कैपिटल एलोकेशन को क्यों इतना ज़्यादा सोचते हैं, फिर हमने सीखा कि इंडिया में शुगर इंडस्ट्री कैसे चलती है, थर्ड थिंग डैट वी लर्न वॉज कि डिस्टिलरी बिजनेस की क्या इकोनॉमिक्स होती है, फोर्थ चीज़ हमने सीखी जो गेयर मार्केट है उसके अंदर हाई स्पीड गेयर्स होते हैं और स्लो स्पीड गेयर्स होते हैं, तो हाई स्पीड गेयर्स में कैसे कस्टमाइजेशन चाहिए होती है, फिर हमने फाइनली सीखा कि जो वाटर EPC बिजनेस है ONM बिजनेस है उसके अंदर क्या क्या होते हैं. एंड देन हमने इस कंपनी के थीसिस एंड एंटी थीसिस पॉइंटर आगे बढ़े सो दैट वी हैव अ न्यूट्रल ओपिनियन ऑफ द बिजनेस. जस्ट एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, आई डू नॉट ओन द स्टॉक बट माय पर्पस इज टू ट्रैक ऑल दीज बिजनेसेस विच लुक एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, बिकॉज एटलीस्ट होमवर्क हो जाता है इसके थ्रू. अगर आपका होमवर्क हो जाता है देन इट्स नथिंग दैट मतलब इन्वेस्टिंग इज नथिंग बट अपॉर्चुनिटी मीटिंग द प्रिपेयर्ड माइंड. दैट इज व्हाई वी डू मोस्ट ऑफ दीज वीडियोस. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में लो कि आपको अगला बिजनेस एनालिसिस कौन से बिजनेस पे चाहिए एंड आपकी इस बिजनेस एनालिसिस से क्या की लर्निंग्स थी. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ SOIC. जय हिंद.